بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. اللہ جل شانہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا، یہ زندگی کا اہم ترین مقصد ہے. جتنے احکام کو اپنانے کے لیے کہا جاتا ہے وہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی پسندیدہ چیز ہے. جتنی چیزوں کے کرنے کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے، چونکہ وہ چیزیں اللہ کو پسند ہیں اسی لیے کرنے کا حکم دیا، تو اس لیے ان تمام احکامات پر عمل آوری، یہ ہے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا. اور جتنی چیزوں سے اللہ نے روکا ہے، ان تمام چیزوں سے رکنا اللہ کی مرضی ہے. اسی لیے جو آدمی اللہ کی روکی ہوئی چیزوں سے رکتا ہے، تو اس کی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق. یہ ایک اجمالی جملے ہیں، اسے ذہن میں رکھنا چاہیے. ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی مرضیات کو پورا کرنا، اسی میں ہمارے لیے آخرت میں نجات ہے، اور اسی میں ہمارے لیے اس دنیا میں عافیت. اب یہ ایک ایسا مضمون ہے جس کو ہم بار بار کسی نہ کسی سے مختلف انداز سے سنتے رہتے ہیں، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، یہ کرنے کا بڑا ثواب ہے، یہ کرنے کا بڑا گناہ ہے، یہ کرنے کے یہ فائدے ہیں، یہ کرنے کے یہ نقصانات ہیں. یہ سب تفصیل اسی کی تفصیل. ہماری ذمہ داری ہے زندگی دینے والے کی مرضی کے مطابق زندگی کا گزارنا. ان کی مرضی دو چیزوں میں ہے، جن چیزوں کو انہوں نے کرنے کو کہا ان کو کرنا ان کی مرضی ہے، اور جن چیزوں سے بچنے کو کہا ان سے بچنا ان کی مرضی ہے. ہمارے اندرون کی حالت ایسی ہو جانا کہ ان کی مرضی اپنی مرضی ہو جانا، تعلیم کا، تعلم کا، اصلاح کا، تربیت کا، سننے کا، سنانے کا جو نظام ہے وہ اسی واسطے ہے کہ اپنی کچھ ایسی تربیت ہو، اپنی کچھ ایسی اصلاح ہو، اور اپنے اوپر اپنی کچھ ایسی محنت ہو کہ جو اللہ کی مرضی ہے وہ ہماری مرضی ہو جائے، اپنی پسند باقی نہ رہے، اپنی مرضی باقی نہ رہے. تمام چیزوں سے بہتر، تمام چیزوں سے اعلیٰ، تمام چیزوں سے افضل اللہ کی مرضی ہے. اسی کو فرمایا بزرگوں نے، مرضی مولا ازہما اولا. ازہما بولے تو تمام چیزوں سے زیادہ بڑی ہوئی چیز اللہ کی مرضی. اب اس اللہ کی مرضی پر چلنے سے جو روکنے والی چیزیں، اس کا صحیح تعارف نہیں ہے، اس کے نتیجے میں آدمی اللہ کی مرضی کے خلاف زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے. اس لیے جو دوست ہے اس کا تو تعارف ہونا ہی چاہیے، جو دشمن ہے اس کا بھی تعارف ہونا ضروری ہے نا، ورنہ بچیں گے کیسا. موجودہ زمانے میں خصوصیت کے ساتھ اللہ کی مرضیات کے مطابق زندگی کو گزارنے سے روکنے والی جو چیزیں زیادہ جس میں لوگ مبتلا ہیں، ان میں سے ایک ہے خواہش نفس. آدمی کے اندر میں لذات کی، مزوں کی، تفریح کی، جذبات کی تسکین کی بہت سی چیزیں پائی جاتی ہیں. ان سب پر ابھارنے والا انسان کا اس کا اپنا نفس ہے، اور وہ چاہتا یہ ہے کہ یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، یہ مل جائے، وہ مل جائے. یہ خواہش نفس. اب اس خواہش کو ہوا دینے میں شیطان سرگرم دور ادا کرتا ہے، وہ دکھتا نہیں ہے، لیکن ہے کہ نہیں ہے، آیا کہ نہیں آیا، اس کی کچھ علامتیں رہتی ہیں. علامتوں سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ آگے اپنا کام شروع کر دیا. جیسے دیوار کے پیچھے سے آپ دیکھیں، آپ ادھر ہیں، دیوار ادھر، بیچ میں ہے، पीछे से धुआं उठ रहा, क्या बोलते हैं, आग जलाई जा रही है, बोलते ना, देखे आग को, देखे तो नहीं मगर उसकी जो अलामत है वो दिख रही नहीं दिख रही, वो अलामत के जरिए समझ में आ जाता है कि वहां कोई चीज सुलगाई जा रही है। इसी तरीके से आप इधर हैं मगर आपको दीवार में टुक 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 की आवाज आ रही, कोई है जैसा है पीछे, बोलते नहीं, देखे उसे नहीं देखे, अगर है बोल के बोल दो, लेकिन उसकी एक असर है, उसका एक निशानी है, उसकी एक अलामत है जिसके जरिए से आदमी पहचानता है कि इसके पीछे कोई है मौजूद। ऐसे ही बुरे बुरे ख्यालात दिल में आने लग जाए तो शैतान तो दिखता नहीं है, मगर आके अपना काम शुरू कर दिया, समझ में आता नहीं आता, इसलिए कि उसका जो काम है, उसका जो निशान है, उसका जो असर है वो महसूस होना शुरू हो गया। दिखा तो मारूंगा, मुकाबला करूंगा बोल के रहता है जज्बा, असल में मुकाबला तो नहीं दिखने के बावजूद करने का अच्छा ना उसका, है बोल के मालूम हो गया तो उसके खिलाफ में करना ही है कुछ ना कुछ। तो एक दुश्मन नफ्स है, दूसरा दुश्मन शैतान है, तीसरा दुश्मन वो इंसान है जिनका मिजाज शैतानी है। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नती वन्नास, अन्नास बोले तो इंसान है ना, वो लोगों के दिलों में खराब ख्यालात डालता है, वो जिनों में से हो या इंसानों में से। तो मालूम ही होगा कि अरे इसके तेवर बदल गए, इसके काम काज बदल गए, क्या हुआ जी इन्हें लाइन बदल गए, अरे उसके साथ रह रह के इसका भी अंदर का हाल वैसे हो गया। ये इंसान नुमा शैतान, एक नफ्से इंसान, दूसरे शैतान, तीसरे इंसान नुमा शैतान। यही इंसान नुमा शैतानों के बारे में कुरान पाक में आया कि कल क़यामत के दिन ऐसे ही लोगों के बारे में लोग कहेंगे अरिनल लज़ीनी अज़ल्लाना मिनल जिन्न वल इंस नजअलहुमा तहत अक़दामिना लियकूना मिनल अस्फलीन। जो लोग सही रास्ते से हटाने का जरिया बन गए उनके बारे में कहेंगे कि मौला जरा उनको दिखा दे, हम आज उनको अपने पैरों के नीचे रौंद ना चाहते हैं, ताकि सबसे नीचे वाले हिस्से में वो लोग पहुंच जाए, लिए कूना मेरे लश्करी। तो यहां राय हक से जितने हटाने वाले लोग हैं कल उनके बारे में ये तासुर होगा सीधे रास्ते से हटने वालों का। तो जहां तक शैतान का ताल्लुक उसका जिक्र कुरान पाक में आया है, कल क़यामत के दिन बोलेगा ये जितने लोग उसके बहकावे में आ गए उनसे कहेगा, देखो अल्लाह का वादा तो सच्चा था, जहां तक मेरा वादे का ताल्लुक है तो मैं तो वादा खिलाफ हूं ही, और मेरा तुम्हारे ऊपर कोई ज्यादा जोर नहीं चलता था, जो कुछ मैं कर सकता था वो ये कर सकता था कि तुमको बुलाऊं, ये कर लो वो कर लो वो कर लो, अब मेरे बुलाने पर तुम्हारा आना नहीं आना, मेरी दावत को तुम्हारा कबूल करना नहीं करना ये तुम्हारे अख्तियार में था। आजकल भी बहुत सारे लोगों को बहुत सारी जगहों से दावतें आती है ना भाई, तो कहीं जाते हैं कहीं नहीं जाते, जहां जाते हैं कबूल करते हैं तो जाते हैं, जहां नहीं जाते हैं कबूल नहीं करते हैं तो नहीं जाते हैं, ऐसे ही है ना मामला। ऐसा तो नहीं कि जिस किसी का भी रुख आ रहा उन्हें वहां से जी पुलिस की गाड़ी भेज रहा, चार सिपाहियों को भेज रहा, उसको डाल लेके आओ बोल, ऐसा कहीं है दावत जी, आते दावत देते चले जाते भाई आप शिरकत करिए हमारे यहाँ बड़ी ख्वाहिश, इतना इतना जाना नहीं जाना कबूल करना नहीं करना तो अपना काम है। शैतान यही बोलेगा क़यामत के दिन, मैं बुलाया था कबूल करना नहीं करना आना नहीं आना तुम्हारा अपना काम था, इस वास्ते मेरे को कहीं को बुरा भला बोल दे, अपने आप को ही बुरा भला बोलो, क्या फजूल करना क्या फजूल नहीं करना, कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, इतनी सूझबूझ तो मौजूद थी। ये तो बिल्कुल ऐसा ही हो गया जैसे प्लेट में खाना रखा हुआ हो, उसमें आपने थोड़ा सा जहर मिला दिया, मिलाई कहा खा लो यार, तुम भी दरी वाले। तो बोल रहा था उन्हें बेजार हो के जिंदगी से, तो मर जाना अच्छा है बोल के उन्हें खा लेता बैठा था, तुम भी खा लो बोल के बोल रहा हूँ। तो खाना नहीं खाना इख्तियार का है कि नहीं है? जब अपने को मालूम है कि उसमें जहर मिला हुआ है तो ऐसी सूरत में उसके खाना नहीं खाना ये तो पूरा अपना इख्तियारी अमल है। अब शैतान बुला रहा है तो जहर मिला हुआ मिली हुई चीज की तरफ बुला रहा है कि नहीं बुला रहा? ये बुरा ख्याल आया, बुरे जज्बात पैदा हुए जी। तो ऐसी सूरत में जब शैतान बुला रहा है बुराई की तरफ, तो बुलाने वाला कौन है उसको समझना भी मुश्किल नहीं है। इसलिए कि अच्छाई क्या चीज है बुराई क्या चीज है इतना तो शऊर तकरीबन हर एक को हासिल है। बेहयाई के काम का ख्याल अंदर में आया तब ये दावत किसकी हो सकती है? अरे किसी शर पसंद ही की हो सकती, या तो नफ्स होगा या शैतान होगा, या फिर शैतान इंसान नुमा शैतान होगा। इसलिए कि अल्लाह पाक ने शैतान के बारे में बता दिया, वह अमरुकुम बिल फाहशा यईदुकुम अल फक्रा वयअमुरुकुम बिल फाहशा, शैतान तुमको बेहयाई का हुक्म देता है। तो बुराई के जज्बात पैदा हुए तो समझना चाहिए कि ये तो या शर नफसानी है या वसवसे शैतानी। अब इसे कबूल करना नहीं करना अपने अख्तियार की चीज है। दोस्त समझेंगे तो कैसा भी आतंक बोलेंगे, है ना? दुश्मन समझेंगे तो माजिरत कर देंगे। अब जिसे अल्लाह ने अल्लाह के रसूल ने दुश्मन बता दिया उसकी दावत को कबूल कर ले रहे हैं जबकि ये मालूम है कि उसमें खराबी मिली हुई है, तो फिर ऐसी सूरत में हम खुद मुजरिम करार दिए जाएंगे। तो इसलिए ये तीन बुनियादी चीजें हैं जिसकी तरफ जहन रखना जहन में बात रखनी चाहिए। एक नफ्स इंसानी है, दूसरे वसवसे शैतानी है, तीसरे इंसान नुमा दिखने को इंसान है मगर अंदर से शैतान होते हैं। ये रुकावट डालने वाली चीजें हैं अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जिंदगी के गुजारने से। फिर नफ्सानी ख्वाहिशों में तीन चीजें बहुत ही ज्यादा मुझे, एक अपने अंदरून में पाया जाने वाला किब्र बहुत नुकसान देने वाली चीज, उसी को अना से ताबीर करते हैं अनानियत। दूसरे जाह की मोहब्बत, दरअसल उसी का हिस्सा है समझ लीजिए, और बहुत नुकसान देने वाली चीज। तीसरे दुनिया की चीजों की, माल की, दौलत की, चीजों की मोहब्बत। ये अब छह चीजें होंगे समझी, एक ख्वाहिश नफ्स, दूसरे अनानियत, तीसरे हुब्बे माल या हुब्बे दुनिया, और चौथे शयातीन, और पांचवें इंसान नुमा शयातीन और किब्र। ये वो चीजें हैं जो आदमी को अल्लाह की मर्जी के मुताबिक चलने से रोकती हैं। जब तक कि इन चीजों की तरह मुतवज्जे नहीं रहे जिंदगी अल्लाह की मर्जी के मुताबिक नहीं गुजार सकते। जहां कहीं भी खराबी आपको मिलेगी इन्हीं चीजों में से कोई एक चीज की वजह से मिलेगी। जैसे मिसाल के तौर पर आपके सामने किसी ने कोई अच्छी बात कही, आपने कोई नामुनासिब अमल किया और किसी ने कहा कि भाई ये बात नहीं कहा, ऐसा नहीं होना चाहिए, करना गलत है, सही नहीं है। अब कोई पूछा बोल दिया था ना जी फलाना सही नहीं है, बोल के फिर क्यों करे बोल के, तो क्या बोलता आदमी? उन्हें बोला तो मैं सुनता हूँ। तो क्या चीज रुकावट बनी? अनानियत। अरे भाई धोखा देना, धोखा दे के दुनिया कमाना ये इस्लाम में जायज नहीं है ना, धोखा देना तो ईमान वाले की निशानी नहीं है। फिर कहे के वास्ते ये काम तुमने किया? नहीं साहब, ऐसा करे बगैर नहीं चलता है जमाने में कारोबार। तब क्या चीज रुकावट बनी? माल की मोहब्बत। फिर बुरा ख्याल आ गया, बुरा ख्याल आ गया तो फौरन वो काम कर बैठे, जिस बुराई का ख्याल आया था वो काम कर बैठे। अभी बुराई का ख्याल अगर नफ्स की तरफ से है तो नफ्स की पैरवी होगी, शैतानी वसवसा है तो शैतान की पैरवी होगी। कभी कभी कोई कुछ कर देता है, भाई ऐसा क्यों करे तुम? बोला नहीं भाई, उन्होंने करो बोले तो करा, गलत काम है वो। बोले कह के बात से करे तुम? तो नहीं, उन्होंने करो बोले थे बल्कि कर दिया। तो किसकी पैरवी हो गई? इंसान नुमा, इंसान नुमा शैतान की पैरवी हो गई। और किसी को बोल के देखो तुम भी शैतानी जे मियां, बोल के जिंदगी में कभी गुस्सा नहीं कराऊंगा, उतना गुस्सा करता हूं जी। अरे भाई अल्लाह की मर्जी के खिलाफ बुलाने वाला है, अल्लाह की मर्जी के खिलाफ उकसाने वाला शैतान नहीं है तो फिर क्या है? ये जो रुकावटें है ना, ये रुकावटों को दूर नहीं कर रहे हम लोग। इस्लाह और तरबियत में आगे नहीं बढ़ने की वजूहात में से एक वजह ये है कि जो रुकावटें हैं, रुकावटों को हम रुकावटें नहीं समझ रहे। कुरान से, हदीस से, मुख्तलिफ मिसालों से समझा समझा के बोल रहे हैं कि ये दोस्त नहीं है, ये दुश्मन है, उसके बावजूद उनसे दोस्ती रखते हैं, इस्लाह कैसे हो जाएगी? अल्लाह जल्ल शानहु के हुक्म को पूरा करने के मकसद से हजरत सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहि सलाम ने अल्लाह के मंशे की तकमील में बेटे को जुबा करने के वास्ते जब ले जा रहे थे तो वो तीन जगह कंकर मारने का हुक्म है ना हाजियों को, क्या कर रहा था? हूं रुकावट डालने के चक्कर में था, जिनको जमरात बोलते हैं। चूंकि वहां शैतान जाहिर हुआ था, उसी जगह मारने का हुक्म है जहां कंकरी फेंकी जाती है, उसको बोलते हैं जमरा। अब आहिस्ता आहिस्ता पब्लिक में वो जगह, वो पिलर, वो सुतून, वो दीवार भी शैतान बोलते हैं। असल वैसा है नहीं कि जहां वो गायब हुआ था वहां पर कंकर गिरने के वास्ते वो खीफ के जैसा बनाते ऊपर, वो हल्के में डाल दिए कंकर तो सीधा जाके वहां गिरता जहां वो गायब हुआ था। सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहि सलाम ने बताया कि अल्लाह के मंशे को पूरा करने में रुकावट डालने वाले को ऐसे ही मार भगाना चाहिए। अब उसका सबक हर आजिम हज को हज के मौके पर मनासिक अदा करते हुए अल्लाह जल्ल शानहू ने इस अमल को लाजिम कर दिया। और एक आध दिन करे तो भूल जाएंगे, बोल के तीन दिन करे, पहले दिन जाओ शैतान मार, शैतान को मार गया, दूसरे दिन जाओ फिर रमी जमरात कर गया, तीसरे दिन जाओ फिर रमी जमरात कर गया हो, और अगर किसी वजह से उस जगह ठहर गए तो फिर चौथे दिन भी रमी करके जाओ। ये बताया कि अल्लाह के मंशे को पूरा करने में रुकावट डालने वाले की मुआफकत नहीं मुखालफत करना चाहिए, साथ देना नहीं मुकाबला करना चाहिए। अब हाजियां हर साल 25-25 30-30 35-35 लाख हाजियां हज करके आ रहे, दुनिया भर से आने वाले हाजियों की तादाद 25-30 लाख से कम की नहीं रहती जी। ये हिसाब से अंदाजा लगा लो, अगर हर साल ये 25 लाख में एक 10 लाख पुराने जी, 15 लाख नए समझ, तो ये हर साल 15-15 लाख लोग शैतान के मुखालिफ बनकर उसकी मुखालफत सीख कर वापस आ गए तो चंद बरसों में दुनिया में इनकलाब बर्पा हो जाएगा नहीं हो जाएगा? मगर वहां जाके जो करते ना वो मुखालफत नहीं करते, ऐसा मालूम होता है शैतान से मुकाबला करते नहीं, मुकाबला करे जैसा करते। अपने उर्दू हैदराबाद की मालूम है, मुकाबला नहीं करते, मुकाबला करे जैसा करते। कैसा समझ में आता? समझ में ऐसा आता है कि रमी जमरात करने के बाद जेब में से मोबाइल निकाल के दोस्त को देते, वहां जाके ठहर जाते, इन्हें जाके उसको लग के ठहर जाता, जहां उन्हें कंकर मारा था ना, वहां जाके उसको लग के ठहरता, तेरा पोजिशन सही लो बोलता, पूरा दिखना बराबर। अब उसको ऐसा लगा कि वहां से फोटो खींच के लाके अब दोस्तों को बताता, देखो मैं वहां गया था। वो क्या मतलब है, मारने को मारो कंकर, मगर मेरा उसका अलग रहना हो नहीं सकता जी, दोस्ती मेरी बरकरार है। मुकाबला करे जैसा करा, मुखालफत करे जैसा करा, मगर असलन उसकी नफरत, उसका बोझ, उससे अदावत, उससे दुश्मनी, इसका कोई असर उसके अंदर उनमें नहीं है। नतीजे में फिर अब तो हर जगह चीजें मिलने लग गई है, वरना पहले वहां जाके और रमी जमरात करने के बाद आते आते बड़े बड़े जी रंगीन टीवियां गल बगलों में दबा के उठा लेके ला देते थे लोग। अरे जमरात तुम्हारे, फिर ये सब क्या है जी, शैतानी डब्बे साथ में लेके आ रहे हैं। वो एक अमल है साहब, करने का कर दिया बस, बाकी इससे इसको छोड़ के अपन जिंदगी कैसे गुजार सकते। ये हाल हो गया है सब। अब लोग दोस्तों से कहते हैं कि भाई जो आदमी ऐसा हो जिसके साथ रहने की वजह से आपकी नमाजें छूटती हो, आपसे गुनाहों का इर्तिकाब होता हो और आपको बार बार बुराइयों में मुब्तला करता हो, आप ऐसे ऐसे दोस्ती मत कीजिए। तो हजार बहाने करता, कैसा तोड़ लियो सब ताल्लुकात, लंगोटी आ रहे हैं। लंगोटी आप लोग समझते नहीं समझते, बचपन से दोस्ती है उससे, अब उसको छोड़ने को तैयार। जबकि हमारे अकाबिर और बड़ों का कहना यह था कि अगर किसी को बुरी सोहबत मिल जाए तो फिर वो किसी भी किस्म की बुराई में मुब्तला हो सकता है। तबाह कुन चीज है खराब सोहबत। अब दोस्तियां छोड़ते रहे उससे। कभी कभी कोई कोई आके बोलता, मैं छोड़ देना तो चाह रहा हूं, मगर अब बाद लोग क्या बोलते हैं, वो लोग बोलते हैं अरे भाई इन्हें बहुत इसमें आ गया, गुरूर में आ गया, तकबूर में आ गया, घुमंड में आ गया, ऐसा यूं बोलते हैं। इस वास्ते दोस्ती रखना पड़ रहा बोल के बोलते कभी कभी आके, उसके मुतकब्बिर हो गया बोलने से आप मुतकब्बिर हो जाते हैं, उसके गुरूर में आ गया बोलने से आप गुरूर में आ जाते हैं, उसके घुमंड में आ गया कहने से आप घुमंड में आ जाते हैं। ऐसा तो नहीं है। अगर उन्हें बोल दिया आप करोड़पति हैं, आप करोड़पति हो जाते हैं, ये आसानी से समझ में आता होगा जी, ये तो आसानी समझ में आता होगा ना। उन्हें बोल दिया क्या फलकनुमा प्याले से आपका है, आपका हो जाता है। इनसे बोल दिया चिरियान प्याले से आपका है, फिर कह दिया पंचमहल का है, मान लेते हैं। किसी की बोलने से थोड़ा ही होता है भाई, आपके अंदरून की हालत देखो कैसी है, आप किस वजह से उससे दोस्ती नहीं रखना चाह रहे। जब आपको ये मालूम है कि उसके साथ रहने की वजह से मेरे फराइज छूट रहे हैं, मेरे वाजिबात छूट रहे हैं, उसके साथ रहने की वजह से मुझसे गुनाहों का सुदूर हो जा रहा, और उसके साथ रहने की वजह से मुझे फला फला चीजों का इर्तिकाब करना पड़ रहा है जो शरीयत में नाजायज है, अब उससे अलहदा रहने को कहते हैं, उससे दोस्ती छोड़ने को कहते हैं, छोड़ते नहीं। कैसे इसरा हो जाएगी भाई, ये भी तो बिल्कुल ऐसा ही हो गया जैसे कि आपके घर में खराब बू आनी शुरू हो गई, फौरन किसी मजदूर को बुलाए, पूरा घर धुलाए, जनाब झाड़ू झटका कर दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, फिर वैसी बू आ रही, फिर वैसी जा रही, फिर वैसी जा रही, 10 दफा धुला दिए मगर आते चले जा रहे। अरे भाई क्या करना समझ में नहीं आ रहा, बल्कि अब लोग क्या समझते हैं, घर में खराब किस्म की बुआरी साहब धुला रहे हैं, कर रहे हैं, धुआं दे रहे हैं, स्प्रे मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फिर भी वैसी का वैसी से मामला। जाहिरी तदबीर कर लिए को समझ में नहीं आ रहा, आप किसी आमिल साहब को बुला के बताना चाहिए, अब उसे करना पड़ जाता। लेकिन कोई इसके जरिए मजालिस में आने वाले समझदार से कोई बोल दिए कि भाई ऐसा ऐसा किस्सा है, क्या किस्सा है जरा देखो, मालूम ये हुआ कि बाहर की गंदी पानी का नाली का रुख जनाबे वाला के घर की घर में है, उधर से गंदा पानी दाखिल होते चले जा रहा है। तो ऐसी सूरत में आप अंदर ही हजार कोशिश कर लेंगे तो क्या होगा जी, वो बाहर से आने वाला जो रास्ता है, बाहर से आने वाला जो पानी का उसकी सूरत है, आप उसे बंद करिए, फिर ज्यादा करने की जरूरत नहीं। एक मजे की बात सुनाओ आप लोगों जी। वो एक साहब देखे कि साहब उनके घर में, घर के सामने वाली दीवार पे सुबह ही सुबह ताजा खून देखे, एकदम कराहत हो गई, उसको धुलाए करे वगैरह, चुना डाले, दूसरे दिन फिर वैसे परेशान हो गए, क्या करना चाहिए। अब इस किस्म की चीजें तो आदमी को फौरन जहन किधर ले जाते हैं, आपको मालूम है, मेरे से पहले पहुंच गए होंगे आप लोग। अब वहां इसका नहीं भागे, उसका नहीं भागे, उन्हें मैं करता हूँ इलाज, मैं करता हूँ इलाज, ये हो गया और वो हो गया, जब तक कुछ बोले नहीं उस वक्त तक बड़ा हामिल बोल के समझ में भी नहीं आता जी। कुछ बोलना जरूरी है उन्हें, ये हो गया वो हो गया, बोले कुछ भी नहीं है जी, बोले तो इन्हों कुछ भी नहीं है समझता हूँ। उधर हजारों पैसे खर्च कर दिए, उधर हजारों पैसे खर्च कर दिए, अंदर में रहने वाले लोगों पर खर्च कर दिए हजारों, बाहर वाले लोगों में से भी किसी से रब्ता था तो उनको ही बुला के इलाज कराए, कुछ फायदा नहीं। और रोजाना का वही पैसा बुला रहे हैं, चुना लगा रहे हैं, फिर जैसे का वैसा, पैसों को भी चुनना लगते चले जा रहा है। हमारे दोस्तों में से एक दोस्त थे बेचारे, उनका ने पहुंच गया आखिर बेजार हो गए, क्या करना था समझ में नहीं आया। उन्होंने बोला ठीक है मैं आके जरा देखता हूँ, देख के बोलता हूँ मैं इलाज कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। उन्होंने आए आके देखे, देख के करके बोले कर सकता हूँ मैं इसका इलाज, अलबत्ता मेरी एक शर्त है, वो शर्त पूरी करना होगी। ये बहुत अच्छी बात है, बताइए क्या शर्त है। तो ये जो बड़ा झाड़ है ना आपके घर के सामने, ये झाड़ काट देना। बोले बिल्कुल साहब बिल्कुल काट देता हूँ, झाड़ काट दे। बोले जो अमल करना था मैं कर लिया, तुम लोग ये दीवार को अच्छी तरीके से धो देंगे, साफ सुथरा चूना लगा दो, अब नहीं होगा, तुम्हारा इलाज हो गया बस। अब दूसरे दिन देखे तो दीवार बिल्कुल उजली सफेद, कुछ नहीं, बड़ा खुश हो गया, क्या पक्का इलाज करे साहब, बहुत जबरदस्त आमिल। एक दूसरा दिन हुआ, तीसरा दिन हुआ, वो नहीं है वो चीज, बहुत खुश हो गए वो साहब। उनको तो नहीं बोले होंगे मगर मेरे को बोले साहब, असल में हिस्सा ये था वो झाड़ के ऊपर वो बड़बागल रात को लटकते थे। बड़बागल जानते हैं? हाँ, बड़े किस्म की चुड़ियां रहते चमड़े वाले, उल्टा लटकते थे झाड़ों पे। और उनकी खसूसियात में से एक खसूसियत ये है कि उनकी मादाओं में से जिस्म से खून टपकता है, तो वो नतीजे में वो टपकता था तो दीवार लाल हो गए, जगह जगह खून के धब्बे दिखते थे। उन्होंने बोले साहब इलाज जो था वो ये था कि उनको लटकने का जो मौका है वो खत्म करने का है बस, असल इलाज ये था, वही इलाज करा मैं बोल के। असल बुनियाद क्या चीज है खराबी की, उसकी तरफ तवज्जो नहीं होती। जैसे अंदरून में बदबू महसूस हो रही है तो उसका सबब क्या है वो नहीं दरियाफ्त कर रहे, अंदर धोते चले जा रहे, धोते चले जा रहे। इसी तरीके से हमारी अपनी जिंदगियों में जो बिगाड़ है उस बिगाड़ का सबब क्या है, उन असबाब में से एक बुनियादी सबब है खराब माहौल। उन असबाब में से एक बुनियादी सबब है खराब सरपसंद बेदीन बददीन किस्म के अफराद से दोस्ती। और इस बेदीनी या बददीनी या बदअमली के असबाब में से एक बुनियादी सबब है दुश्मन को दुश्मन नहीं समझना। उसके नतीजे में जिंदगियां गुजरते जा रही हैं, बरस हर बरस गुजर रहे हैं, जैसे के वैसे रहे। हमेशा आके ये बोलते साहब एक फरारी बीमारी है मुब्तला हूं, छुट्टी नहीं मिल रही, उससे छोड़ने को तैयार नहीं होता आदमी, उसके लिए कुर्बानी देने को आमादा नहीं होता, मुजाहिदे के लिए तैयार नहीं रहता, हकीकी नफ्स की मुखालफत के वास्ते आमादा नहीं होता। इसलिए याद रखना चाहिए इस मौके पर, गुज़िश्ता जुमा में भी ग़ालिबाना कोई सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के बारे में कोई बात आपके सामने रखी गई थी। आज जिस चीज की तरफ तवज्जो दिलाई जा रही है वो ये है कि भाई जो भी अल्लाह के मंशे के पूरा करने में रुकावट बनने वाली चीज हो उसको दफा करना, جس کی علامت کے طور پر یہ بتایا گیا کہ وہاں ساتھ ساتھ کنکر مارو. اور شاید اسی وجہ سے ہمارے بعض بزرگوں نے وساوی سے شیطانی وغیرہ سے حفاظت کے واسطے ساتھ ساتھ مرتبہ معوذتین وغیرہ پڑھو بول کے بولتے. مگر اس میں جو کمی کوتاہی رہ جاتی ہے وہ کمی کوتاہی دراصل بے اطمینانی، بے اعتقادی، بے اعتمادی کی بیماری ہوتی ہے، جس کی وجہ سے حقیقی فائدہ نہیں ہوتا. اس کے بارے میں ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ایک آدمی اپنی جان بچانے کے واسطے اس کا پیچھا کرتا ہوا کوئی دشمن آ رہا تھا تو ایک بہت بڑی شخصیت کے پاس جو ہر اعتبار سے مضبوط تر تھی اس کے پاس پہنچ کے ہانپتے کانپتے اس نے گزارش کی، صاحب ذرا مجھے پناہ دے دیجئے، میرے پیچھے دشمن بھاگا چلا آ رہا ہے، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، یہاں بیٹھ، یہاں رہ جاؤ، یہ روم میں تم کوئی فکر کرنے کی تم کو ضرورت نہیں ہے، یہاں کوئی پر نہیں مار سکتا، یہ انہوں نے کہہ دیا. اب وہ بیٹھنے کو بیٹھ گیا اندر، کبھی بیٹھ رہا کبھی آ کے دروازے میں سے جھانک کے دیکھ رہا، بیٹھا ہوا ہے بے چین بے چین، کبھی وہ کھڑکی کی طرف دیکھ رہا کبھی یہ کھڑکی کی طرف. ارے کیا بے چینی ہے، کیا پریشانی، میں صاحب آ رہا کی کیا ہے، آ رہا کی کیا ہے، کیا بولتا ہو پناہ دینے والا، جب ہم نے تجھ سے کہہ دیا کہ یہاں کوئی دم نہیں مار سکتا، تم بے فکری سے یہاں رہو، تو پھر ہمیشہ تمہارا ادھر ہی متوجہ رہنا، دیکھتے رہنا، ڈرتے رہنا، اور یہ سمجھتے رہنا کہ آ جاتا کہ کیا ہے کہ آ جاتا کہ کیا ہے کہ، یہ تو علامت ہے اس بات کی کہ تمہارے کو ہمارے اوپر اعتماد نہیں ہے، تو چلے جاؤ یہاں سے، نکال دے گا نہیں نکال دے گا. ہم لوگ دعا کرتے ہیں، معاملات کرتے ہیں، وظائف پڑھتے ہیں، لیکن اعتقاد یقین میں کمزوری کی وجہ سے حقیقی فائدہ نہیں ہوتا. تمہارے کو مخلوق پر ہی نظر زیادہ ہے، ہمارے اوپر نظر اٹھتی نہیں ہے، تو پھر جاؤ مخلوق کے حوالے ہو جاؤ. تو بہرحال بھائیو، جو بات آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے وہ اس کا خلاصہ وہی ہے جو ابتدا میں عرض کیا گیا، ہم سب سے اللہ جل شانہ جو چیز چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہماری زندگی ہو جائے، اور اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی ہونے کے واسطے جو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں وہ نفس انسانی ہے، وہ شیطان ہے، اور وہ انسان نما شیاطین ہے، اور انسان کے اندرون میں پائے جانے والی بیماریاں انانیت، حب جاہ اور حب مال ہے. اس سے اگر اپنے آپ کو ہم بچانے کا اہتمام کریں گے اور اس کی مخالفت کریں گے تو ایسی صورت میں زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنے کے لیے راہیں انشاءاللہ العزیز ہموار رہے گی، اور آدمی صحیح ڈھنگ سے کام کو انجام دے پا سکے گا. اللہ جل شانہ سے علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک صاحب کے بارے میں اطلاع یہ ہے کہ دعائے مغفرت کی جائے، عبود بن سعید بادیان، اللہ جل شانہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی خدمات کو قبول کرے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے متعلقین کو صبر جمیل نصیب کرے. اللہم ربنا لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها مولاها. وصلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. والحمد لله.